Subjects for general conference talks are assigned.
जनरल सम्मेलन के लिए वार्ता के विषयों को नश्वरता के अधिकार द्वारा नहीं परंतु आत्मा के प्रभाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत से विषयों का सुझाव मानव संबंधित द्वारा होते हुए हम सब बांटते हैं, परंतु जैसे यीशु ही नहीं सिखाते नश्वरता की चुनौतियां या उसके दिनों की राजनीति दमन से कैसे उभरा जाता है। वो अक्सर अपने सेवकों को उसके विषय में क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है कि उसके अनुयायी अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार कर अपने स्वर्गीय घर में लौटने की तैयारी कर सकते हैं। मैं बहुमूल्य और समय रहित यीशु के एक दृष्टांत की शिक्षा के बारे में बोलने के लिए प्रभावित हुआ हूँ। बोलने वाले का दृष्टांत सभी तीन सुसमाचारों में एक सबसे छोटा दृष्टांत कहा जाता है। इसे यहाँ तक कि एक सबसे छोटे समूह के दृष्टांतों को यीशु अपने शिष्यों को समझते हैं। बीज जो बोया गया था राज्य का वचन, वचन या परमेश्वर का वचन, स्वामी की और उसके सेवकों की शिक्षाएं हैं। बीजों को विभिन्न मिट्टियों पर गिरने विभिन्न तरीकों को दर्शाता है जिसमें मानव इन शिक्षाओं को ग्रहण कर अनुसरण करते हैं। अतः बीज जो कि रास्ते के किनारे गिरते हैं वो नश्वर मिट्टी तक नहीं पहुंच पाते जहां उनके उगने की संभावना होती है। ये इस तरह से है जो हृदय कठोर है पर या नहीं है को शिक्षाएं दी जाती हैं। मैं इसके विषय में और अधिक नहीं बोल सकूंगा। मेरा संदेश हम में से उन से संबंधित है जो मसीह का अनुसरण करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें उद्धारकर्ता की शिक्षाओं के साथ जैसे हम अपना जीवन जीते हैं क्या कर सकते हैं। बोलने वाले का दृष्टांत परिस्थितियों और व्यवहारों की हमें चेतावनी देता है जो कि किसी भी सुसमाचार संदेश को प्राप्त करते हैं के आगे ईश्वरीय फल लाता है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। यीशु सिखाते हैं कि ये उनका वर्णन है जो ये वो वहां जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। सुनने वालों को अपने भीतर जड़ न रखने के क्या कारण होते हैं? यही नए सदस्यों की परिस्थिति होती है जो केवल प्रचारकों द्वारा या गिरजा की छवियों पर आकर्षित होते हैं या गिरजा की सदस्यता के बड़े बड़े कामों को देखकर परिवर्तित होते हैं। वचनों की जड़ से नहीं होते। जब विपत्तियां आती हैं वे तेजी से घायल होकर और ताजगी खोकर दूर हो जाते हैं, लेकिन यहां तक जो गिरजा में पले बड़े होते हैं लंबे समय से सदस्य रहे भी परिस्थिति में फिसल कर निकल सकते हैं जहां उनके अपने भीतर जड़ नहीं होती है। मैं ऐसे ही बिना दृढ़ता और अंत तक न रहने वाले यीशु मसीह के सुसमाचार से परिवर्तित कुछ सदस्यों को जानता हूं। यदि हम सुसमाचार की शिक्षाओं से और रोजाना उसके अभ्यास करने की जड़ों से नहीं जुड़े हैं हम में से किसी का हृदय कठोर बन सकता है जो कि आत्मिक बीज के लिए पथरीली भूमि है। आत्मिक भोजन आत्मिक लोगों के लिए आवश्यक है, विशेषकर संसार जो परमेश्वर के विश्वास से और सच में यही गलत से दूर होता जा रहा है। इस युग में इंटरनेट शासन करता है जो संदेशों को बढ़ाता है जिससे विश्वास लड़खड़ाता है। हमें अपने आत्मिक सच्चाई से अवगत कराना चाहिए, हमारे विश्वास को बल देते और सुसमाचार से जुड़े रहना चाहिए। युवा लोगों यदि ये शिक्षा को ज्यादा ही साधारण लगती है या यहाँ पर विशेष उदाहरण है अगर प्रभु भोज का प्रतीक बांटा जाता हो और आप संदेश लिखते या फुसफुसाते या वीडियो गेम खेल रहे हो या कुछ भी करके अपने आप को विशेष आत्मिक भोजन से इनकार करते हैं, आप अपने आत्मिक जड़ों की सेवा करते और अपने आप को पथरीली भूमि की ओर ले जाते हैं। आप अपने आप को जब आप मुसीबत जैसे अकेलापन, खतरों या उपहास का सामना कर रहे होते हैं, छेद कर मुरझा दूर करते हैं। यह वयस्कों पर भी लागू होता है। आत्मिक जड़ों को नष्ट करने वाली अन्य दूसरी संभावनाएं भी है। हाल की वृद्धि करती तकनीकियां, परंतु ये इतनी अनोखी नहीं है। ये सुसमाचार या गिरजा को देखने का नजरिया है। ये सीमित झेलक कुछ विशेष सिद्धांत या वास्तविकता या मार्गदर्शक की कमजोरी और सुसमाचार योजना की परिदृश्यता को नजरअंदाज कर अनुभव कराता है और व्यक्तिगत और जातिवाद उसके फल होते हैं। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकले ने इस सूक्ष्मतरी BYU की दर्शकों की राजनीति के कमेंटेटरों की अ फ्लेम विथ इंडिग्नेशन हाल ही की खबर की घटना में विषय में बतलाया था। कला के अध्ययन के साथ उन्होंने निंदा और क्रोध को खटाई में डाला था। वास्तविकता में उन्होंने समाप्त किया, ये युग और जगह उपहारित भोले भालों की है। विपरीत में सुसमाचार सुरक्षित होकर जुड़ना हमें सीमित और आलोचना में नाप तोल करके और परमेश्वर की शानदार कार्य को देखने के लिए हमें खोज करते रहना चाहिए। यीशु ने सिखाया कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। उसने समझाया कि ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। ये सच में हम सभी के द्वारा ध्यान देने वाली चेतावनी है। मैं सबसे पहले धन के धोखे पर बोलूंगा। जहां कहीं भी हम अपनी आत्मिक यात्रा में हैं, कुछ भी आपका परिवर्तन होने का स्तर हो, हम सभी इसके द्वारा लोभित होते हैं। जब स्वभाव या प्राथमिकता उपलब्धि, प्रयोग या धन संपत्ति पर स्थिर होती है, हम उससे जुड़े जाते हैं। बहुत कुछ कहना है और जड़वाद के विषय में लिखना है। इस सूक्ष्म को यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता है। वे जो धर्म विज्ञान में जिसकी समृद्धि कहा जाता है में विश्वास करते हैं, वो धन का धोखा से सफर करते हैं। धन संपत्ति की ऐश्वर्य विशेष आय स्वर्गीय समर्थन का प्रमाण नहीं होता और उसका न होना स्वर्गीय असमर्थन होता है। जब यीशु ने विश्वासी अनुयायी को बतलाया था कि तुझे अनंत जीवन मिलेगा यदि तू अपना सब कुछ कंगालों को दे दे, उसने धन संपत्ति में कोई बुराई नहीं देखी थी, परंतु बुराई उस अनुयायी के स्वभाव में थी। जैसे हम सब जानते हैं, यीशु अच्छे सामरी की प्रशंसा करते हैं जिसने वही चंद सिक्कों से उसके साथी की सेवा की थी। उसी का उपयोग कर यहूदा ने उसे धोखा दिया था। सारी बुराइयां उसी जड़ धन नहीं होता, अपितु धन से प्रेम होता है। मॉर्मन की पुस्तक एक समय बताती है जब परमेश्वर का गिरजा अपनी प्रगति में असफल होना शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों का गिरजे की शुरुआत उनके मन सांसारिक धन संपत्ति पर लगा हुआ था। जिस किसी के पास भी सांसारिक वस्तुएं बहुतायत से हैं, वे नाशे में हैं। वह आत्मिक तौर से संसार की दूसरी चीजों और संपत्ति के द्वारा खतरे में है। यही स्वाभाविक परिचय है उद्धारकर्ता की अगली शिक्षाओं का। सबसे कठिन कांटा सुसमाचार के शब्दों के प्रभाव से हमारे जीवनों में सांसारिक तथ्यों से बाहर निकालता है कि यीशु इसे कहते हैं, होते होते ये चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। यह स्मरण करने के अनेक हैं, कुछ उदाहरणों को आगे जोड़ा गया है। एक अवसर पर यीशु ने अपने श्रेष्ठ शिष्य को फटकारा था। पत्रस से कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्यों की बातों पर लगाने का अर्थ है इस संसार की बातों की चिंता करना, परमेश्वर की बातों से, अपने कामों से, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सोच से आगे रखना। इस जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उसके सामने हम घुटने टेकते हैं, जब हम आदि हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर की बहुमूल्य आजादी का उपहार को कम कर देता है, जब हमें मामूली सा मन बहलावे द्वारा छल लिया जाता है, जब हम अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण बातों से परे ले जाते हैं, और जब हमारे पास मानसिक अधिकार होता है जिससे हमारी व्यक्तिगत प्रगति की आवश्यक योग्यता को हमारे अनंत नियति के लिए भंग करता है। हम इस जीवन की चिंताओं से उभर जाते हैं जब हम भविष्य में भय के द्वारा शक्तिहीन हो जाते हैं, जो हमें विश्वास में आगे बढ़ने से परमेश्वर में और उसके वादों पर भरोसा करने में बाधा डालता है। 25 साल पहले मेरे BYU के माननीय शिक्षक W. Nimle संसार के बातों से घिरे होने के खतरे पर बोले थे। उनसे एक साक्षात्कार में पूछा गया था, क्या सांसारिक परिस्थितियां और हमारे कर्तव्य सुसमाचार को फैलाने के तरीकों को इच्छापूर्वक खोजते हैं, संसार को रहने के अनुकूल बनाए जैसे हम गिरजाघर में करते हैं? वो जवाब देता, यही गिरजाघर की संपूर्ण कथा है, क्या ये नहीं है? यहाँ पर आपके पास अपमानित होने के इच्छुक होते हैं, आप यहाँ पर खतरा उठाने के इच्छुक होते हैं, वहीं से जहाँ से विश्वास अंदर आता है। हमारी वचनबद्धता लगभग एक परीक्षा है, ये लगभग कठिन है। इस संसार के लगभग अव्यवहारिक विकल्प अनुसार इस सुसमाचार की प्राथमिकता को BYU कैंपस में कुछ महीनों पहले दृढ़ता के साथ कैथोलिक मार्गदर्शन चार्ल्स जे चैटपट आग विश्व फिलाडेल्फिया के द्वारा कहा गया था। चिंताओं के बारे में बोलते हुए LDS और कैथोलिक समाजों ने बांटता, जैसे कि विवाह और परिवार का विषय, हमारे लैंगिकता की प्रवृत्ति, मानव जीवन की पवित्रता और धर्म आजादी की आवश्यकता। वे कहते हैं, मैं दोबारा से बल देता हूँ, वास्तविकता में जीने का महत्व, जिस पर हम दावा करते हैं कि हमें विश्वास है, इसी प्राथमिकता की जरूरत है, न कि सिर्फ हमारे व्यक्तिगत और परिवार की जिंदगियों में, पर बल्कि हमारे गिरजों में, हमारी राजनीतिक चुनाव में, हमारे व्यवसाय की रीतियों, दीनों की उपचारों में, दूसरे शब्दों में, सब कुछ हम जो करते हैं। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों है, वो जारी रखता है। कैथोलिक अनुभवों से सीखते हैं, हम कैथोलिक विश्वास करते हैं, हमारी छुट्टी समाज में प्रभावित करती है, लेकिन वहाँ समाज में होकर रहना और समाज द्वारा सहते रहना के बीच एक चीनी सी रेखा होती है। उद्धारकर्ता की चेतावनी इस संसार की चिंताओं से, परमेश्वर के वचनों से, हमारे जीवनों की वास्तविक चुनौतियों से, हमें हमारी प्राथमिकताओं को रखने से, हमारे हृदय बनाए रखने, परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके गिरजा के मार्गदर्शक पर रहने के विरुद्ध है। उद्धारकर्ता के उदाहरण हमें इस दृष्टांत को सोचने के कारण हो सकते हैं, जैसे मिट्टी का दृष्टांत। मिट्टी की काबिलियत हम में से प्रत्येक के हृदय पर, जो सुसमाचार के बीच में प्रति खुले हो, निर्धारित होती है। आत्मिक शिक्षाओं की संवेदनशीलता में कुछ हृदय कठोर और तैयार नहीं होते हैं, कुछ हृदय पत्थर की तरह जटिल और कुछ सांसारिक बातों के ऊपर लीन होते हैं। बोलने वाले का दृष्टांत की समाप्ति उद्धारकर्ता के इस बीज के वर्णन, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी और फल लाए, में विभिन्न मापदंड के साथ होती है। हम कैसे वही अच्छी भूमि वैसे ही अच्छे फल के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले ही उत्तम मन संभालते रहते हैं और धीरे से फल लाते हैं। हमारे पास सुसमाचार का बीज है, प्राथमिकताओं को रखना ये हम सब के ऊपर है। कुछ ऐसा करें कि हमारी मिट्टी अच्छी और हमारा फल बहुतायत से हो। हमें जड़ को मजबूती से पकड़े यीशु मसीह के सुसमाचार में बढ़ते जाना है। हम इसे परिवर्तन प्रार्थना द्वारा, धर्मशास्त्र अध्ययन द्वारा, सेवा द्वारा पाते हैं, और प्रभु भोज नियंत्रण लेते रहना, आत्मा सदैव हमारे साथ रहेगी। हमें हृदय में महान परिवर्तन की खोज करते रहना चाहिए कि बुरी कामनाओं और स्वार्थीपन की चिंताओं को परमेश्वर के प्रेम के साथ और उसकी उसके बच्चों की सेवा करने की इच्छा में बदलना है। मैं इन सब बातों की सच्चाई की गवाही देता हूँ। मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता हूँ, जिसकी शिक्षाएं रास्ता दिखाती हैं और जिसके प्रयासचित ये सब संभव करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।